नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। बजट सत्र का पहला चरण आज संपन्न। संसद के दोनों सदनों की बैठक 9 मार्च से फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत और दो अन्य सरकारी भवनों वाले सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी आम चुनावों में भारी जीत के बाद सरकार बनाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को पार्टी के निर्णायक जीत पर बधाई दी। कहा, भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर में सम्मेलन का आयोजन। उभरती प्रौद्योगिकियों के बीच रेडियो की बढ़ती भूमिका पर चर्चा। और बैंकॉक में महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 क्रिकेट के ग्रुप मैच में भारतीय टीम ए और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये 9 मार्च को बजट सत्र के दूसरे चरण में शुरू होगी। बजट सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 28 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। दो चरणों में आयोजित बजट सत्र का दूसरा चरण इस वर्ष 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कोडन युक्त कफ सिरप के सेवन से हुई मौतों से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वे अपना उत्तर पूरा नहीं कर सके। उन्होंने सदस्यों से सदन को चलने देने का आग्रह किया, परंतु विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहा। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हुई। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर कई सदस्यों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 28 जनवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण के लिए सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि देश में कोडन युक्त कफ सिरप के सेवन से किसी की मौत की कोई घटना सामने नहीं आई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान श्री नड्डा ने कहा कि जब भी किसी दवा से संबंधित मौत का मामला सामने आता है तो सरकार तुरंत जांच का आदेश देती है। उन्होंने कहा कि दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सुस्थापित नियामक प्रक्रिया लागू है, जिसका सरकार सख्ती से पालन कर रही है।
कई बार ऐसा होता है कि ड्रग जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है, कई बार मिसलेबल्ड होता है और कई बार वो ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जब वो उपयुक्त नहीं होता है तो उसको हम रिकॉल करते हैं। इसका प्रोसीजर दिया गया और ये प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे द्वारा लाए गए मूल प्रस्ताव पर अध्यक्ष से चर्चा के बाद तय किया जाएगा कि इसे विशेषाधिकार समिति या आचार समिति को भेजा जाए या सीधे सदन में चर्चा के लिए लाया जाए। श्री रिजिजू ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि श्री निशिकांत दुबे द्वारा लाए गए मूल प्रस्ताव के बाद सरकार ने फिलहाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में न लाने का फैसला किया है।
राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में बजट स्पीच में भी अनाप शनाप बातें की, बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं, तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमिटी में या इसको एथिक्स कमिटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने बताया कि सरकार ने किसानों की उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए न केवल राजनीतिक स्थिरता और मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है बल्कि स्वस्थ शिक्षित और जिम्मेदार नागरिकों की भी जरूरत है। नई दिल्ली में सशक्त भारत के लिए कर्मयोग पर राष्ट्रव्यापी अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है।
कर्मयोग द्वारा इस देश का हर नागरिक भारत के सतत और समग्र विकास में अपना योगदान दे सकता है। इससे भारत न केवल आर्थिक रूप से प्रगति करेगा बल्कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जो विश्व के लिए मूल्य आधारित जीवन का आदर्श होगा। आज का प्रोग्राम लोगों तक पहुंचेगा, लोग इसी मूल्य आधारित जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे और भारत जो सोने का चिड़िया थे, भारत विश्व गुरु था, मुझे लगता है वो समय जरूर वापस आएगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 तथा 2 का औपचारिक उद्घाटन किया। श्री मोदी ने सेवा तीर्थ की नाम पट्टिका का अनावरण किया। आज शाम को सेवा तीर्थ में वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सेवा तीर्थ का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की आधुनिक कुशल सुलभ और नागरिक केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय स्थित हैं जो पहले अलग अलग स्थानों पर थे। नए भवन परिसरों में आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित किया गया है। कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं। दोनों भवन परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं मौजूद हैं। ये सुविधाएं सहयोग, दक्षता, सुचारू संचालन, नागरिकों की बेहतर भागीदारी और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री कल असम के दौरे पर रहेंगे। वे गुवाहाटी में 5,450 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी डिब्रूगढ़ में लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन देखेंगे। प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि क्षेत्र ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ अरुण रास्ते ने बताया कि यह समझौता निर्यातकों, लघु उद्योगों और किसानों के लिए लाभदायक होगा। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर जनता में भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने दोहराया कि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी।
जो चीज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ये देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं, अब भ्रम फैला करके ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं।
आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व रेडियो दिवस पर प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उभरती प्रौद्योगिकियों के बीच रेडियो की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव जैन, यूनेस्को के संचार तथा सूचना क्षेत्र के क्षेत्रीय सलाहकार हज्जाज माले और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता शामिल हैं। पेश है आकाशवाणी समाचार की ये खास पेशकश।
आज विश्व रेडियो दिवस पर चलिए बात करते हैं कुछ आवाजों की जिन्होंने श्रोताओं के दिलों में खास जगह बनाई। गाना सुनना हो या फिर समाचार सुनना, स्वर चित्रहार, अच्छी बुरी सभी सूचनाएं रेडियो से ही मिलती थी। लाइव मैच की कमेंट्री हो या सरकारी कामकाज, खेती बाड़ी हो या फिर रोजगार, सभी की जानकारी का एकमात्र साधन रेडियो ही था। जाने माने समाचार वाचक देवकी नंदन पांडे का रेडियो के बारे में क्या कहना था, आइए सुनते हैं।
हमारी आवाज ही लोगों के कानों तक जाती है, शक्ल दिखलाई नहीं देती। वैसे रेडियो की इम्पोर्टेंस साढ़ा साल में ये बात आपको बता दूं कि अभी इस मुल्क में खत्म नहीं होगी, तो वहाँ तो रेडियो की उतनी ही इम्पोर्टेंस आज भी है जितनी पहले थी।
बचपन में जब अमीन सियानी का हरदिल अजीज कार्यक्रम बिनाका गीत माला सुनते तो लगता कि ये आवाज़ किसी दूसरी दुनिया से आती है।
भाइयों अब आप बैठ जाइए जल्दी से अपने रेडियो दोस्त अमीन सियानी के साथ गीत माला की छाव में।
आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना पसंदीदा प्रोग्राम मन की बात रेडियो पर करते हैं।
मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ।
30 साल से रेडियो सुन रहे हमारे श्रोता देवेंद्र दास का मानना है कि रेडियो का कोई विकल्प नहीं हो सकता।
मेरा जब से होश संभाले तब से रेडियो हमारा सबसे प्यारा है, वही हमारा जिंदगी है, सब हम इसी से हम जीते हैं मरते हैं।
हम उम्मीद करते हैं जिन आवाजों ने रेडियो को एक नई पहचान दी उन्हें हमेशा यूं ही इस अवसर पर याद किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए फरहत नाज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह दिवस रेडियो से जुड़े लोगों के प्रयासों को सम्मान देने का अवसर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए अपने बचपन के दिनों को याद किया।
We are all celebrating the radio day.
हम सब रेडियो दिवस मना रहे हैं। श्रोता रेडियो स्टेशनों को पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, वह अपनी राय देने और रेडियो स्टेशनों से जुड़ने के लिए पत्र भेजते ताकि वह अपनी पसंद के कार्यक्रम या गीत सुन सके, चाहे वह शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो या फिल्मी गाने। लोग अपनी पसंद बताने के लिए रेडियो का सहारा लेते थे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने 13वें आम चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
BNP और उसके सहयोगी दल अब तक 284 निर्वाचन क्षेत्रों में से 208 में आगे चल रहे हैं, जो लगभग 2 दशक बाद सत्ता में वापसी के लिए स्पष्ट जनादेश का संकेत है। पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान और महासचिव मिर्जा फखरुल ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है, साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं ने भी विजय प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत बांग्लादेश की जनता के उनके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। चुनाव आयोग ने कहा कि संसदीय चुनाव और साथ ही हुई जनमत संग्रहण में 59.44% मतदान दर्ज किया गया। 299 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार शेष सीटों और जनमत संग्रह के लिए मतगणना अभी जारी है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
महिला एशिया कप क्रिकेट राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में बैंकॉक में भारतीय ए टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 131 रन का लक्ष्य दिया है। मौजूदा चैंपियन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 130 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक संयुक्त अरब अमीरात ने 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 6 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट सत्र का पहला चरण आज संपन्न। संसद के दोनों सदनों की बैठक 9 मार्च से फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत और 2 अन्य सरकारी भवनों वाले सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आम चुनावों में भारी जीत के बाद सरकार बनाने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BNP प्रमुख तारिक रहमान को पार्टी की निर्णायक जीत पर बधाई दी। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर में सम्मेलन का आयोजन और बैंकॉक में महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 क्रिकेट के ग्रुप मैच में भारतीय टीम ए ने संयुक्त अरब अमीरात को 131 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।